ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। चीन के तियानजिन में संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। उन्होंने हमले के दोषियों, षड्यंत्रकर्ताओं और धन उपलब्ध कराने वालों को जवाबदेह ठहराने पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन में स्टार्टअप और नवाचार से लेकर पारंपरिक चिकित्सा तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तक के कई क्षेत्रों में पहल की है। उन्होंने कहा कि संगठन के भीतर सहयोग बढ़ाने, अधिक व्यापार और निवेश की आवश्यकता है। श्री जयशंकर ने कल बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल भारत, कुशल भारत पहल से असंख्य लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मिशन ने नए अवसर सृजित किए हैं और लोगों को सशक्त बनाया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर सरकार कौशल संपन्न और स्वावलंबी युवा शक्ति के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप युवाओं को नए कौशल और विश्व के सर्वोत्तम अभ्यासों से सशक्त करने का संकल्प मजबूत कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के सकल निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 210 अरब डॉलर से अधिक हो गया। वाणिज्य और उद्योग सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि दूसरी तरफ देश का आयात जून महीने में 3.71% कम होकर 53 अरब 92 करोड़ डॉलर हो गया है। भारत ने बांग्लादेश से विख्यात फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की ढाका स्थित पैतृक संपत्ति ध्वस्त करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। भारत ने इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में सहायता देने का भी प्रस्ताव किया है। मैमनसिंह जिला स्थित इस ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त करने के फैसले को गंभीर खेद का विषय बताते हुए बांग्लादेश से इसे दोनों देशों की साझा संस्कृति के प्रतीक संग्रहालय में बदल देने का आग्रह किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अभिभावकों से 7 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अद्यतन करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए उंगली की छाप और आंखों के स्कैन की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 5 वर्ष का होने पर बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया निःशुल्क होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार 7 वर्ष की आयु होने के बाद भी अपडेट नहीं कराए जाने पर आधार निष्क्रिय किया जा सकता है। प्राधिकरण ने इस संदर्भ में ऐसे बच्चों के आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेट कराने संबंधी संदेश भेजना शुरू कर दिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
देश में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विश्व में AI क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे तकनीकी केंद्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक AI स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जगत में बदलाव ला रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है कि मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का लेबल लगाए जाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में आ रही इस तरह की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा कि कार्यस्थलों पर खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य विकल्प अपनाने के बारे में अलग से परामर्श जारी किया गया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने रूस और उसके सहयोगियों पर 100% आयात शुल्क लगाने की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि उनका देश अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की अंडर-20 महिला फुटबॉल टीम ताशकंद में आज उज्बेकिस्तान के साथ दूसरा और अंतिम मैत्री मैच खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। सोमवार को पहला मैत्री मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। दोनों टीमें अगले महीने AFC अंडर-20 महिला एशियन कप क्वालिफायर की तैयारियों में लगी है। क्वालिफायर में भारत का सामना इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार से होगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।